तुम अपना हाथ लगा दो बाबा जी। घर में खाना बनाते हैं, जो ज्ञान में नहीं चलते हैं वो अपने हाथ लगाए देते हैं, खाना अशुद्ध हो जाता है। आप अपना हाथ लगा दो बाबा जी आदमी, खाना शुद्ध हो जाएगा। हाँ जी, हाँ जी। और पानी भी याद में पियो,
परम दासी जो आत्माएं आती है उनको एक चरण गति सकती थी भगवत सानिता है, लेकिन जो एक कुछ उनकी आत्मा है द्रौपदी के बाद आती है पौधे की आत्मा, उनको भी सदगति होती है क्या?
जो द्वापर में आएंगे उनके ज्यादा जन्म होंगे या कम जन्म होंगे?
कम जन्म।
नहीं नहीं, जो आत्मा एक जन्म लेती है उनके मुकाबले, एक जन्म की बात अभी कर रहे थे ना, तो जो आत्मा एक जन्म लेती है वो तो कलयुग के अंत में आवेगी, और जो द्वापर के आदि में आवेगी वो एक जन्म लेगी या अनेक जन्म लेगी?
सब आत्मा को गति सकती है और शरीर की मदद।
तो द्वापर के आदि में आवेगी तो एक जन्म लेने वाले के मुकाबले उसको सदगति ज्यादा मिलेगी ना, वो तो एक ही जन्म में आधा समय सुख और आधा समय दुख भोगेगी, और जो द्वापर के आदि में आया होगा वो कई जन्म तक सुख भी भोगेगा फिर कई जन्म तक दुख भी भोगेगा, आधा सुख और आधा दुख।
पेड़ पौधे की जो आत्मा है उनका क्या
है?
उनका भी ऐसे ही है।
मुरली में आया है, नारायण को दिन रात का ज्ञान नहीं है, मुरली का पॉइंट है, नारायण को दिन और रात का ज्ञान नहीं है।
रात होती है क्या? तो ज्ञान कैसे होगा? जहाँ रात होती ही नहीं है तो रात का ज्ञान कैसे होगा? रात का नहीं होगा तो दिन का भी नहीं होगा। माँ तो सदैव है ही दिन दिन, अज्ञान की बात ही नहीं, सदैव आत्मी की स्थिति है। जल कहते हैं इससे कपड़े साफ किए जाते हैं, चाहे शरीर रूपी कपड़े हो चाहे स्थूल कपड़े हो, वो तो जड़ जल है, और चैतन्य जल भी है, ज्ञान जल। इस ज्ञान जल से भी जन्म जन्मांतर के जो कपड़े हैं, आत्मा का जो मैल है कपड़ों पर चढ़ा हुआ, वो साफ होता है। कैसे? डायरेक्ट नहीं, डायरेक्ट आत्मा ज्ञान जल से साफ होती है। आत्मा जो है वो मन बुद्धि है, वो मन बुद्धि ज्ञान जल से स्वच्छ बनती है, और जब मन बुद्धि आत्मा ज्ञान जल से स्वच्छ बनती है तो शरीर भी स्वच्छ बनता है। कैसे? नहीं, ज्ञान जल से तो आत्मा स्वच्छ बनती है, लेकिन आत्मा जब स्वच्छ बनती है तो आत्मा अपने वाइब्रेशन से जो पांच जड़ तत्व है उनको भी स्वच्छ बनाती है। उनमें जल है मुख्य, पृथ्वी पर ज्यादा हिस्से में जल है, ये मिट्टी है, जल ज्यादा हिस्से में, जल पतला होता है, तो जल जो है वो स्वच्छ बनता है। शरीर में ज्यादा हिस्सा जल का है या मिट्टी का है? शरीर में भी ज्यादा हिस्सा जल का है। तो आत्मा के कनेक्शन में जो शरीर का जल है वो स्वच्छ बनता है। अकेला जल ही नहीं, पांचों ही तत्व स्वच्छ बनते हैं। पांच तत्वों को जब तक सतोपधान नहीं बनाया है तब तक सारी सृष्टि सतोपधान नहीं कही जा सकती। बाप शिव तो ज्ञान के द्वारा, ज्ञान जल के द्वारा आत्माओं को स्वच्छ बनाते हैं, परंतु हम आत्माएं क्या करती है? पांच तत्वों को भी स्वच्छ बनाते हैं। पहले अपने शरीर के अंदर जो पांच तत्व हैं, उनको हम स्वच्छ बनाते हैं। तो नाम पड़ा है गांव का जलगांव। हद का जलगांव नहीं, ये शरीर ही बेहद का जलगांव है। क्या क्लास करते करते भी ये जल पीछा नहीं छोड़ता?
क्राइस्ट आदि की आत्मा का प्रवेश भी हम 33 करोड़ में से एक में होता है।
ठीक है, क्राइस्ट आदि जब कहा तो क्राइस्ट जैसे सभी धर्म पिताएं भी उसमें आ गए, और उन धर्म पिताओं को फॉलो करने वाले विधर्मी आत्माएं भी आ गई उसमें। माने मनुष्य सृष्टि के जितने भी विधर्मी आत्माएं हैं वो किनके द्वारा पवित्र बनती है? हैं? 33 करोड़ देव आत्माओं के द्वारा पवित्र बनती है। ये 33 करोड़ देव आत्माएं जो है उनके संग के रंग में जब तक नहीं आएंगे तब तक वो पवित्र नहीं बन सकते। ब्रह्मा ने जितने भी मुख से ज्ञान रतन दिए हैं वो ब्रह्मास्त्र ही तो है,
लेकिन फिर भी वो सुनते
हैं। वो न सुने क्योंकि आप याद में रह के नहीं सुनाते, आप देवान में रह के सुनाते। लास्ट में ऐसा भी समय आएगा कि आप लगातार याद में रहेंगे तो वो सुनेंगे भी। दूसरों को ऊपर दोष थोड़े देना चाहिए, हर बात में अपना दोष देखना चाहिए। हमारी आत्मा लक्ष्मी नारायण जैसा नहीं बनी है,
लेकिन ऐसा मुख्य पॉइंट
तो हमारा असर दूसरों के ऊपर नहीं होता। जब हमारी आत्मा पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बन जाएगी तो हम जिसको छुएंगे वो ही पारस बन जाएंगे। तो गलती किसकी हुई? हमारी गलती।
ऐसा ज्ञान का एक पॉइंट हमारे
अभी तो बताया पहला पॉइंट के कौन सा देना है
जी?
पहला फाउंडेशन पक्का ये डालना है हम आत्मा में।
और बाबा विश्वेश्वर का अर्थ क्या? कृष्णेश्वर
इसलिए को कहा जाता है कृष्ण क्या बुद्धि में घिसते रहो हम देह नहीं है हम क्या है आत्मा है ये घिसने का काम सबसे जास्ती कोई ने तो किया होगा ब्रह्मा ने किया जिसने ये घिसने का काम सबसे जास्ती किया उसी के लिए शास्त्रों में लिखा हुआ है तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुवी
ग्यारह रुद्र अवतार और बारह शिवलिंग वो आत्मा एक ही ग्यारह
ग्यारह रुद्र गण है और उनका बाप है महारुद्र बारवा ऐसे ही हर धर्म में बारह प्रकार की विशेष आत्माएं होती है इसलिए मनुष्य जाति की कितनी राशियां हैं बारह राशियां कोई भी मनुष्य क्यों ना हो बारह राशियों में ही बांटा जाता है
प्रवेश करते हैं ग्यारह बारह जो आत्माएं हैं सेवा बात ग्यारह करते हैं या सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट को सर्वव्यापी बनाते हैं अभी से ही बनाना शुरू कर दिया
बाप दादा बच्चों के द्वारा सेवा करते
हैं बाप दादा करते हैं बाप दादा में रामकृष्ण की आत्मा हो गई रामकृष्ण की आत्मा है कोई भी बच्चों में प्रवेश करेगी बाकी शिव शिव तो बाप के रूप में सिर्फ एक में ही मुकर रूप से कार्य करता है
और हम शिव समान बनने वाली बारह आत्मा है वो
शिव समान बनने का मतलब ये है कि वो सूर्यवंशी आत्मा है तो बाप समान पुरुषार्थ करती है जो महारुद्र है उस महारुद्र को फॉलो करने वाली है विशेष नहीं जो भी आत्मा पाप पुण्य करती है वो पाप की तीव्रता के ऊपर उसको जल्दी अथवा देर से फल मिलता है जो पाप कर्म बहुत तीव्र गति से किए जाते हैं उनका फल जल्दी मिल जाता है और जो पाप कर्म धीमी गति से किए जाते हैं उनका फल कई जन्मों के बाद भी मिलता है क्योंकि परिपक्व स्टेज होनी चाहिए अति होगी तब ही अंत होगा ऐसे ही पुण्य की गति है जो पुण्य बहुत तीव्र गति से किया जाता है उसका फल जल्दी मिल जाता है और जो पुण्य धीमी गति से किए जाते हैं उनका फल बहुत जन्मों के बाद भी मिल सकता है ज्ञान में भी ऐसे ही है बाबा की श्रीमत पर जो बहुत तीव्र गति से चलते हैं उनको तुरंत फल मिलता है धीमी गति से चलते हैं तो लास्ट में नंबर आएगा बाबा के ज्ञान में चलते चलते जो तीव्र गति से मनुष्यों की मत पर चलते हैं या मन मत पर चल पड़ते हैं उनके पाप कर्म सौ गुणे तीव्र गति से बढ़ते जाते हैं तो जल्दी फल देते हैं जल्दी फल देंगे तो रिजल्ट क्या होगा शरीर छोड़ना पड़ेगा सूक्ष्म शरीर धारण करना पड़ेगा
ब्रह्म बाबा ने जब शरीर छोड़ा तो राम वाली आत्मा जो थी वो तो बाद में ज्ञान में आई ना तो फिर अव्यक्तवाणी कैसे चल रही
अव्यक्तवाणी ब्रह्मा की आत्मा और राम की आत्मा चलाती है क्या अरे अव्यक्तवाणी राम की आत्मा चलाती है क्या?
कृष्ण की आत्मा।
बाप दादा इसलिए बोला जाता है कि ब्रह्मा बाबा शिव की याद में सब बच्चों के मुकाबले जास्ती रहते हैं। तुम बच्चे जितना मेरे को याद करते हो मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो ब्रह्मा की सोल बहुत याद में रहती है तो शिव बाप उनके साथ है, इसलिए बाप दादा कहा जाता है। याद करना अलग बात और प्रवेश करना अलग बात। मुरली में बोला है मैं सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा में नहीं आता हूँ, मैं सूक्ष्म शरीर में आता हूँ या साकार शरीर में आता हूँ। सूक्ष्म शरीर को पतित कहेंगे या साकार तन से पतित पना होता है? साकार तन को पतित कहेंगे। इसलिए ब्रह्मा में जब दादा लेखराज के रूप में पाठ बजाया जाता है गुलजार दादी में तो शिव की प्रवेशता नहीं होती है, शिव की याद है, इसलिए उसे गहरी याद के कारण एक भी वाक्य ऐसा नहीं निकलता गुलजार दादी के मुख से जो मुरली के महावाक्यों को काटने वाला हो। कोई वाक्य किसी ने निकाला हो तो बताओ है? नहीं बाघ को शेर को कहते हैं, बाघ माने शेर और शेर भी दो तरह के होते हैं, एक बब्बर शेर। बगर शेर का उतना गायन नहीं है क्योंकि वो इतना खतरनाक नहीं होता है। बाघ बहुत खतरनाक होता है, उसको कहते हैं टाइगर। इसलिए अपने भारत का जो राष्ट्रीय जानवर है वो बबर शेर नहीं है, क्या है? बाघ। और बाबा नाम पर नाम पड़ा है बाघ भी
है। जैसे पहले पाकिस्तान और हिंदुस्तान
दक्षिण भारत को भारत का विदेश कहेंगे तो विदेश पहले होता है या बाद में बनता है? इससे साबित होता है कि मूल भारत बहुत छोटा था क्योंकि जनसंख्या ही बहुत थोड़ी थी। जब संख्या बढ़ती जाती है तो भारत का कलेवर भी बढ़ जाता है। अभी भी बाप दादा बताते हैं समंदर के किनारे के जो शहर हैं जब विनाश होगा तो ये बंबई डूब जावेगी। आज से 100-125 साल के अंदर ये बंबई नाम का शहर था ही नहीं, ये माया की नगरी है। मायावी देश जो है वो पहले थे ही नहीं। 500 साल पहले अमेरिका का नाम निशान मनुष्य की बुद्धि में नहीं था। 300 साल पहले ऑस्ट्रेलिया का नाम निशान भी मनुष्य की बुद्धि में नहीं था। जब द्वापर युग शुरू होता है, द्वैतवादी युग, दूसरे दूसरे धर्म आते हैं, तब ये दूसरे देश समंदर से बाहर आते हैं। पहले समंदर में डूबे हुए थे, अभी फिर समंदर में डूब जाएंगे। एटम बमों के बड़े बड़े धमाके होंगे और उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव में जो सैकड़ों मील ऊंचे बर्फ के पहाड़ हैं वो सब पिघल जाएंगे, फट जाएंगे। वो पहाड़ समंदर में जब गिरेंगे तो समंदर का स्तर ऊंचा उठ जाएगा। ये विनाशी धर्मखंड ना पहले थे और ना अब रहेंगे। ऐसे ही जो भारत का विदेश दक्षिण भारत कहा जाता है वो भी पहले था ही नहीं और अब भी रहेगा ही नहीं।
बाबा 12 का जो ग्रुप होता है उनमें कौन 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 से आते हैं? 12 के ग्रुप में कौन से आते हैं?
कौन से धर्म की आत्माएं?
हर धर्म का एक 12 का ग्रुप है ना। तो वो 12 में कौन सी आत्माएं होती?
कौन सी नाम बताने हैं क्या?
नाम नहीं पता। मतलब बीज रूप मुखिया आधार
सब बीज रूपी है, बीज से ही सारी दुनिया निकलती है।
बाबा अष्टदेव अलग है, सप्तऋषि अलग है ना? अलग अलग है ना?
सप्तऋषि उन्हें कहा जाता है जो सात नारायण है। वो सतयुग में बाद वाले सात नारायण बनेंगे। उनको अष्टदेवों की लिस्ट में नहीं डाला जा सकता।
आठ दिन में जैन में वो अंतगण सूत्र बांटते उसमें कृष्ण का वर्णन आता है, 90 आत्मा का वर्णन आता है, उसमें की वो आदमी क्यों बड़ा आठ दिन में हमारे पशु सुनते रहते ना
ऐसे हिंदुओं में 9 देवियों का गायन है, 9 दिन विशेष चलता है। ऐसे ही जैनियों में 8 दिन विशेष चलता है। वो 9 देवियां भी 9 देवताओं से कनेक्टेड है। ये जो 8 दिन उनका कार्यक्रम चलता है वो भी 8 देवताओं से कनेक्टेड है।
जो दक्षिण ध्रुव तो वो जो बर्फीले पहाड़ है, दक्षिण ध्रुव तो वो तो बर्फीले
पहाड़,
उससे जितना जल स्तर बढ़े उससे ज्यादा तो चंद्रमा जो है धरती पे आने भी बढ़ेगा ना।
तो बात की बात है, जो एटमिक विस्फोट होंगे वो पृथ्वी पर होंगे या चंद्रमा के ऊपर होंगे? तो पृथ्वी के नजदीक जो असर है वो ज्यादा पड़ेगा या पृथ्वी से दूर दूर जो उपग्रह ग्रह है उनके ऊपर पहले असर पड़ेगा?
धक्का लगा
पृथ्वी के ऊपर।
हाँ
बाबा,
भीष्म पितामह ने चक्रव्यूह रचा और अकेला अर्जुन
पितामह ने चक्रव्यूह रचा
भीष्म पितामह ने रचा
द्रोण है भीष्म पितामह ने चक्रव्यूह रचा। अरे महाभारत सीरियल देखा करो
तो जो चक्रव्यूह रचा तो बेना सिर्फ अर्जुन जानता था।
द्रोणाचार्य ने चक्रव्यूह रचा
जानता था।
हाँ जी
उसका
अर्जुन का अर्थ है पुरुषार्थ का सिस्टमेटिक अर्जुन करता है उसको अर्जुन कहा जाता है। तरीके से पहले बाप का परिचय ले संदेश ले। संदेश में तीन बातें आती हैं भगवान आया हुआ है पुरानी दुनिया का विनाश होने वाला है नई दुनिया की स्थापना होने वाली है। ये संदेश पक्का मिले फिर संदेश पक्का जिसकी बुद्धि में बैठता है वो फिर आगे भी बढ़ना चाहता है तो साप्ताहिक कोर्स लेता है। तरीके से साप्ताहिक कोर्स भी ले नियम पूर्वक ब्रह्मचर्य पूर्वक तो फाउंडेशन पक्का पड़ेगा या कच्चा पड़ेगा पक्का फाउंडेशन पड़ेगा। फिर सात दिन का कोर्स होने के बाद सात दिन की भक्ति करे क्या जैसे कोई भी आत्मा पुराना शरीर छोड़े बगैर नए बाप के घर में जन्म नहीं ले सकती ऐसे ही पुरानी दुनियादारी की जो बातें बुद्धि में बैठी हुई है या कोई भी धर्म संप्रदाय पर निश्चय बैठा हुआ है वहां से मरे अनिश्चय बुद्धि बने। अनिश्चय बुद्धि बने माने मर गया और फिर बाप के घर में जाकर जन्म दे। एक दिन आना एक दिन जाना सात दिन की भट्टी में पकना गर्भ में ये ज्ञान गर्भ है। फिर बाप का बच्चा बन करके निश्चय बुद्धि बन करके पैदा हो तो बाप का बच्चा कहा जाता है।
बाबा
अगर ये सिस्टम पूरा नहीं किया तो भगत है या बच्चा है भगत को भक्त की प्राप्ति होगी उसका फाउंडेशन जो है भक्त का रहेगा या बच्चे का रहेगा। बच्चों को वर्षा मिलता है भक्तों को वर्षा नहीं मिलता है। भगवान के भक्तों की संख्या ज्यादा होती है या बच्चों की संख्या ज्यादा होती है। भक्तों की तो संख्या ढेर की ढेर है और भगवान के बच्चे तो बहुत थोड़े होते हैं। तो बच्चा बनना अच्छा है बाप के घर में जाकर जन्म लेकर या भक्त बनना अच्छा है। भक्तों की पहचान है वो सिर्फ आंखों से दर्शन करना चाहिए। किन आंखों से स्थूल आंखों से दर्शन करना चाहेंगे। अब भगवान का इन आंखों से दर्शन होता है क्या है? अरे आत्मा का ही दर्शन नहीं होता अपनी आत्मा ही नहीं दिखाई पड़ती तो भगवान कहाँ से इन आंखों से दिखाई पड़ेगा। तो भगत होते हैं दर्शन करने वाले विनाशी आंखों से और जो बाप के बच्चे बनते हैं वो अविनाशी आंख खोलते हैं। मनुष्य सृष्टि का बाप है त्रिनेत्री उसको शंकर कहा जाता है जिसमें तीसरा नेत्र सदाशिव प्रवेश करता है वो तीसरा नेत्र खोलता है। उस तीसरे नेत्र से तरीके से भट्टी करके जो बाप को पहचानते हैं वो फिर बाप के बच्चे बनते हैं। जो बच्चे बनते हैं वो जन्म जन्मांतर की सुख शांति के वर्षे के अधिकारी बनते हैं।
भक्ति मार्ग में चंद्र कहा जाता है।
हाँ क्योंकि राम जब भगवान बाप आते हैं तो राम वाली आत्मा सबसे पहले फेल हो जाती है। इसलिए पहले नंबर का चंद्रवंशी कौन हुआ? राम वाली आत्मा पहले नंबर का चंद्रवंशी होगी। जो पहले फेल होता है वो पहला चंद्रवंशी, जो बाद में फेल होंगे वो बाद के चंद्रवंशी। अब ऐसा तो कोई है ही नहीं जिसको माया फेल न करती हो। वह है
और शास्त्रों में तो राम को सुनियो से बताया
है।
शास्त्रों में राम को सुनियो से बताया है।
शास्त्रों में जो राम को सूर्यवंशी बताया है वो राम सूर्यवंशी वास्तव में उसको भगवान बताया है या भगवान का बच्चा बताया?
भगवान बताया।
तो शास्त्रों की तो बात ही अलग है। राम और कृष्ण को उन्होंने भगवान समझ लिया है, बाकी बात छोड़ दो। राम और कृष्ण भगवान नहीं होते, यहाँ तो बाप के बच्चे हैं राम और कृष्ण।
सूर्यवंशी चंद्रवंशी बनते हैं।
हाँ, जो सूर्यवंशी बनते हैं वो सब चंद्रवंशी बनते हैं। कोई पहले चंद्रवंशी बनते हैं, कोई बाद में। कोई पहले फेल होते हैं, कोई बाद में फेल होते हैं। तो जो पहले फेल हो जाएगा वो ज्यादा अनुभवी बनेगा, या जो बाद में फेल होगा वो ज्यादा अनुभवी बनेगा। और फाइनल पेपर पहले होता है या बाद में होता है? राम वाली आत्मा तो फायदे में, पहले फेल हो गई और बाद में फाइनल पेपर में पास हो जाती। इसलिए मुरली में बोला है कि जो लक्ष्मी नारायण बनते हैं वही राम सीता बनते हैं। अर्थात जिस नंबर के लक्ष्मी नारायण बनेंगे उसी नंबर के राम सीता बनेंगे।
बाबा मुस्लिम लोग,
हाँ रुको, आपने भी ऐसा कुछ पूर्व जन्म में किया होगा दाढ़ी पूछ वाला बन के? उसको न देखो, अपनी आत्मा को देखो, हमको वो इतना दुख क्यों देता है? तो आपने भी ऐसे किया होगा, आपको तो भगवान मिला है इसलिए आपका दुख कम हो जाता है। उसको तो उस जन्म में भगवान भी नहीं मिला था, उसका तो दुख बहुत ज्यादा था, इसलिए आप सहन करो। एक कान से सुनो दूसरे कान से निकाल दो। हाँ जी,
इनका सुन लो।
पार्वती जी ने ना शंकर जी को पूजा करा है? पार्वती जी ने ना ज्यादा पत्ता और कम फूल चढ़ाया ऐसा बोलते हैं, तो फूल कौन है पत्ता कौन है?
पार्वती जब ज्ञान में आती है, एडवांस ज्ञान लेती है, तो रुद्रमाला तैयार हो जाती है या कुछ रह जाती है? तैयार हो जाती। तो रुद्रमाला के जो राजा बनने वाले फूल है वो तो निकल गए, तो पत्ते पत्ते रह जाते हैं। तो पत्तों को ज्यादा चढ़ाती है, पत्तों को ही खाती है।
बाबा
कोमा में गई तो वहाँ कोमा में किस स्टेज में गई? उसी स्टेज में गई तो अंत बते सुखते क्यों नहीं होगी।
बाबा 16 शरीर छोड़ने के बाद तुरंत जन्म लेती क्या कुछ दिनों के बाद?
अगर सोल है आत्मा है तो तुरंत जन्म लेगी। अगर पाप कर्म करने वाला भूत प्रेत है तो भूत प्रेत तो दुखदायी होते हैं, तो सूक्ष्म शरीर धारण करके जब तक उसका हिसाब किताब होगा तब तक भटकती रहेगी। हिसाब किताब पूरा करने के बाद फिर जन्म लेगी, नहीं तो आत्मा शरीर छोड़ती है और तुरंत जाकर के गर्भ में जन्म लेती है।
बाबा
उसका गर्भ महल जो है वो शरीर छोड़ने से 4 महीने पहले से ही तैयार होने लगता है। जिसका महल पहले से ही तैयार होने लगा हो वो वहां जाएगा नहीं
जाएगा। बाबा
कृष्ण की सोल रेगुलर पढ़ाई पढ़ रही।
कृष्ण की सोल नहीं पढ़ेगी रेगुलर पढ़ाई तो फिर कौन पढ़ेगा?
तो फिर भी उनके ध्यान में नहीं आ रहा कि गीता का भगवान शिव शंकर भोलेनाथ है।
अच्छा बुद्धि है ना? बच्चा बुद्धि का मतलब क्या हुआ?
तो समझ में कब आएगा बाबा?
बीज है या बच्चा है? बच्चा है। बच्चा बुद्धि तो बच्चा बुद्धि होता है, जो बीज है वो तो बाप होते हैं। बाप ज्यादा समझदार होता है या बीज ज्यादा समझदार होता है? नहीं नहीं, पत्ता ज्यादा समझदार होता है, बाप ज्यादा समझदार होता है। तो आप बाप है इसलिए प्रश्न कर रहे हैं क्यों नहीं समझता?
और गीता माता की आत्मा
है माया तब हार मानेगी जब तुम हार मानना बंद कर देंगे।
गीता माता का एडवांस में है गीता के भगवान को
गीता माता हमेशा एडवांस में रहती है या माया के प्रभाव में आ जाती है? एडवांस में कहा रहे ऐसे विष्णु पार्टी में जाने वाले सदैव एडवांस में रहते हैं या माया से हार खा के कन्वर्ट हो जाते
हैं? बाबा मुस्लिम लोग अर्ध चंद्रमा को मानते हैं, वो तो चांद ब्रह्मा के अंतर भी
है,
जो अर्ध चंद्रमा है वो ब्रह्मा के अंतर भी, उसके अंदर जो स्टार बताया वो
ब्रह्मा की यादगार।
बाबा अभी शरीर छोड़ता है तो उसको जब स्मशान में लेके जाते हैं तो फिर रास्ते में अगर कोई माता है उसको देख लेती है ना तो वो कपड़े को ऐसे उसका जो कलो रहता है वैसे
वो
शरीर छोड़ता है ना
वो टाटा करती है। अब तुम जीते जी मर गए और जो जीते जी देवान से मर गया उससे हमारा कोई कनेक्शन नहीं है। यही तो मेरी बात है, जब तक देवान है तब तक माताओं को देवान होता है। माताओं का कनेक्शन उन्हीं से है जो देवान में, अब कनेक्शन खत्म।
बाबा माता की ऊपर की बोला ऐसा
माता में तो देवान ज्यादा होता है।
मस्जिद में जाते हैं नमाज पढ़ने के लिए तो मुसलमान माना लेडीज को क्यों जाने नहीं देते हो नमाज पढ़ने के लिए? क्या रोल है ऐसा?
मुसलमान जो है मस्जिद में जाकर के जो नमाज पढ़ते हैं वो कान बंद कर लेते हैं, न हम कोई बात तो सुनेंगे किसी की और न दूसरों को सुनने देंगे। तो मुसलमान अपने युगलों को अपने घरवालियों को कमजोर समझते हैं या पावरफुल समझते हैं? कमजोर समझते हैं, इसलिए न खुद सुनेंगे न उनको सुनने देंगे और न यहाँ आने देंगे।
बाबा अर्जुन जयद्रथ को मार नहीं सका तो अग्नि प्रवेश करने के लिए चिता जलाता है तो कृष्ण सूर्य को जाग देता है सुदर्शन चक्र से सुदर्शन चक्र से ही सूर्य को जाग देता है
सूरज
को ढक देता है।
इसका व्यर्थ कर देते हैं,
ढक देता नहीं है, रोजमर्रे के जीवन में भी ऐसे होता है कि सूर्य के सामने कभी बादल आ जाते हैं और ऐसे लगता है कि सूर्य छिप गया, बाद में बादल हट जाते हैं। तो ऐसे ही हुआ, उसने जो प्रतिज्ञा ली थी कि सूर्य अगर अस्त हो गया तो हम अपने जीवन का अस्त कर देंगे, तो वो गलत फहमी हुई थोड़े समय के लिए। बाद में सूर्य हुआ आया, उसकी तपस्या वो प्रतिज्ञा पूरी हो गई, जैसे कुमार गिराए ऐसे थोड़े कि सुदर्शन चक्र से ढक दिया।
बाबा बोलते हैं कि ब्रह्मा को सबसे ज्यादा मोह बच्चों से था।
जवाब, ब्रह्मा ब्रह्मा ने बड़ी और माँ माने माँ, साधारण माताओं को ही इतना मोह होता है तो वो तो बड़ी की बड़ी अम्मा है।
उन्होंने जो शरीर छोड़ा 69 में जब उनका हार्ट फेल हुआ तो हार्ट फेल क्यों हुआ?
इसीलिए हुआ कि अम्मा को अपने बच्चों के ऊपर बहुत नाश था और जिन बच्चों के ऊपर बहुत नाश था उन्हीं बच्चों ने धोखा दे दिया तो हार्ट फेल हो गया।
तो हार्ट फेल उन्होंने अपनी जो प्रॉपर्टी दी हो जो ट्रस्ट बना लिया बच्चों ने वही ट्रस्ट बनाने की वजह से ही हार्ट फेल हुआ ना उनका? क्या और दूसरा कुछ कारण है कि उनमें ज्यादा मोह था?
ट्रस्ट की वजह से
हार्ट फेल
नहीं हुआ, बच्चों के ऊपर जो ज्यादा विश्वास था वो विश्वास का घात हो गया। भक्ति मार्ग में तो ऐसे ही मनाते चले आते हैं क्योंकि आत्मा तो शरीर छोड़ने के बाद तुरंत जन्म ले लेती है और पितर सिर्फ हिंदू के ही पितर खाते हैं या मुसलमान और क्रिश्चियन के भी पितर खाते हैं? ये सब भक्ति मार्ग का ढकोसला है और ढकोसले की यादगार कहाँ की है? संगम युग की यादगार चली आ रही है। संगम युग में जो भगत ब्राह्मण है बीके में वो अभी भी अपना पितर किसको मानते हैं? मम्मा और बाबा को। क्या वो खाने आते हैं? ऐसे ही खिलाते रहते। अच्छी बात है ना, खराब कह के लिए बाबा का आना भी खराब होता है क्या? खाना खिलाना तो क्या है?
अशुभ मार्ग से
नहीं, नहीं वो तो भक्ति मार्ग की बात है। ठीक है, तो अच्छी बात है ना, तुम्हें खुशी बनी है? जिस बात से खुशी बढ़े वो अच्छा है या खराब है?
बाबा जो पूरा आत्मा आचरण करते हैं
उसको जल्दी शरीर में वो आत्मा अच्छा करती है। आत्मघाती महापापी, वो तो बड़ा पाप हो गया, उनकी तो दुर्गति हो जाती है उन आत्माओं की। वो सूक्ष्म शरीर में भटकती रहती है, दूसरों को दुख देती रहती है, उनको अपना शरीर नहीं मिलता है। ये दूसरे धर्म में कन्वर्ट होने वाली आत्मा ऐसा करती है, आत्मघाती महापापी। जो देवी देवता सनातन धर्म के पक्के हैं, वो कभी ना हत्या करते हैं और ना अपनी हत्या होने देते हैं। प्राण लेना और प्राण देना ये मनुष्यों का काम नहीं है।
बाबा, जो आत्माएं बी के मारा ब्रह्म कुमारी से एडवांस में आती है या भारतीय दुनिया की आत्मा एडवांस में आती है, तो उनको पहले नियमावली बताना है या कोर्स करने के बाद बताना है?
कोई को भी आत्मा परमात्मा बाप का पूरा निश्चय बैठाना है, फिर वो कोई भी बात मानने के लिए तैयार हो जाएगा। अगर बाप का है पूरा पहचान बुद्धि में नहीं बैठी है, तो नियम दुनिया भर के कानून बताने लगो वो तो भाग जाएगा। बीके से ही सब आते हैं एडवांस में, ऐसा कोई नहीं आता जो बीके से ना आता हो, चाहे पूर्व जन्म का आता हो चाहे इस जन्म का आता हो। या तो पूर्व जन्म में बीके में रहा होगा या तो इस जन्म में बीके में रहा होगा, तब ही आएगा एडवांस में।
पहले बात के ऊपर नीचे गिराना है।
हाँ जी
बाबा, आत्मा जब अविनाशी है तो यशुपाणी की संख्या कम क्यों होगी? आत्मा अविनाशी है ना?
हाँ जी,
तो फिर वो यशुर प्राणियों की संख्या कम क्यों होगी?
प्राणियों
की जंगली
प्राणी
हत्या होने से क्या आत्मा की हत्या हो जाती है?
उनकी संख्या कम हो रही
है,
उनकी संख्या कम हो रही
है। हाँ,
आत्मा तो अविनाशी है ना?
हाँ,
तो यशोर पाणी जो है जंगली जानवर,
हाँ,
उनकी संख्या कम हो रही
है। अरे वो चार पाए हैं कि नहीं?
हाँ,
उनके चार पाँव होते हैं ना, तो जो चौपाया है वो एक जाति है, वो एक जाति से कन्वर्ट होकर के दूसरी जाति में चला जाता है। क्या कोई भी चौपाया, मान लो शेर है, और शेर जो है वो शरीर छोड़ देते हैं, जंगल में आग लग गई, शेरनी रह गई, अब वो शेरनी का दूसरे प्रकार के चौपाई जानवर से कनेक्शन देह का हो सकता है या नहीं हो सकता है? हो सकता है। तो जाति बदल जाएगी कि नहीं? ऐसे जातियां बदलती रहती है।
चौपाइयों में शाकाहारी मांसाहारी भी है ना?
हो जाते हैं, मिक्स भी हो जाते हैं। डायनासोर की बातें बताते हैं, डायनासोर था फिर खत्म हो गई जाति। क्यों खत्म हो गई? कोई जंगल में आग लगी, सारे ही डायनासोर मारे गए, कोई एक बच गया मेल या फीमेल, उसका कनेक्शन कोई मगरमच्छ से हो जाता है तो दूसरी प्रकार की जाति बदल जाती है, उनका खान पान सब बदल जाता है।
बाबा, आत्मा ज्ञान तो बहुत लेती है लेकिन संस्कार क्यों बदलने होते हैं? आत्मा ज्ञान बहुत लेती है ज्ञान, लेकिन संस्कार जल्दी नहीं परिवर्तन होता।
वो ज्ञान लेते ही नहीं, जो ज्ञान दिल से अंदर धारण करते हैं वो ही परिवर्तित होते हैं। जो ज्ञान को दिल के अंदर धारण ही नहीं करते, जैसे रावण, रावण बहुत प्रकांड विद्वान था, ज्ञानी था, लेकिन क्या दिल के अंदर ज्ञान को धारण करता था? नहीं। तो संस्कार कहाँ से चेंज हो जाएंगे?
बाबा, साइंटिस्ट लोग कहते हैं कि सृष्टि की निर्मिति बहुत सालों पहले हुई है, वो 5000 साल की
सृष्टि। साइंटिस्ट सच्चा बोलते हैं या भगवान बाप सच्चा बोलते हैं?
भगवान।
क्यों बात बताते
हैं?
ऐसा बोलते हैं। अब आनी माने देवी, कलयुग में देवी होती है, कहाँ से देवी? ऐसा कुछ होता नहीं है, ये सब भक्ति मार्ग की दंत कथाएं चली आती है, इन पर विश्वास नहीं करना चाहिए। देवी देवताएं सतयुग त्रेता में होते हैं या कलयुग में होते हैं? देवी देवताएं होते ही नहीं, तो तलवार कहाँ से देख लिया? ये तो संगम युग में ज्ञान तलवार चलाने के संस्कार जिसने भरे, वो वहाँ द्वापर कलयुग में स्थूल तलवार भी तीखा चलाता है। यहाँ जिन्होंने संस्कार नहीं भरे है तीखी तलवार चलाने के, तीखा ज्ञान सुनाने के, उनमें वहाँ भी तलवार का युद्ध करने के संस्कार नहीं आते हैं, भाग जाने के संस्कार आ जाते हैं।
क्योंकि शिवाजी महाराज को तलवार भवानी माता ने नहीं दी,
कलयुग में, कलयुग में शिवाजी हुए,
भवानी माता कहाँ जा रही हुआ?
कलयुग में भवानी कहाँ से आ गई? चित्र में दिखाते हैं, जो चित्र बनाने वाले हैं वो मनुष्य हैं भिखारी या भगवान ने चित्र बनाए?
कथा मिल दिखाए, कथा मिल दिखाए शिवाजी महाराज,
कथाएं किसने लिखी?
मनुष्य।
फिर मनुष्य भिखारी होते हैं, निर्भिकारी होते हैं? भिखारी बुद्धि से गलत बात तैयार करेंगे या सच्ची बात तैयार करेंगे? अभी बुद्धि में बैठा नहीं कि तलवार चलाने के संस्कार कहाँ से आते हैं? तो क्यों ऐसी बात उठाते? असत स्पष्टीकरण है, इसका मतलब बुद्धि में हुआ ही नहीं।
जादू
का अर्थ क्या? राक्षसी पढ़ाई है, इसको कहते हैं तांत्रिक पढ़ाई, भूत प्रेत आत्माओं को सिद्ध करने की पढ़ाई। भूत प्रेत आत्माओं की पूजा भूत प्रेत करेंगे या देवात्मा ही करेंगे? गीता में लिखा है जो भूत प्रेतों की पूजा करते हैं वो भूत योनि में जाकर के जन्म लेते रहते हैं, जन्म जन्मांतर उनको सूक्ष्म शरीर भूत प्रेत का मिलता रहता है। जो देवताओं की पूजा करते हैं वो देव योनि में जाकर के जन्म लेते हैं, और जो मेरे को मानते हैं एक बाप दूसरा न कोई, वो भगवान भगवती जैसे लक्ष्मी नारायण बनते हैं। तो कौन सी पढ़ाई पढ़नी चाहिए? बाप जो पढ़ाई पढ़ाते हैं वो ऊंच के ऊंच पढ़ाई पढ़ाते हैं, मैंने विद्या क्यों पढ़नी चाहिए? ये तंत्र मंत्र की जो साधना है मैली विद्या है, मैले कर्म कराने वाली आत्माएं होती है, पूजा लेती रहती है और जिनसे पूजा लेती है उन्हीं को दुख देती है। अन्न किसे कहा जाता है? एक है स्थूल अन्न, जो शरीर के पेट का पोषण करता है, पेट भरता है। एक है सूक्ष्मानंद जो आत्मा का पेट भरता है। शंकर जी नाम दिया है तो शंकर जी की आत्मा कब पुरुषार्थी है? जो आकर के अन्न मांगेगी वो तो जन्म जन्मांतर की जबरदस्त पुरुषार्थी आत्मा है, उसे किसी से लेने की दरकार नहीं है। वास्तव में शंकर में शिव आते हैं, वो शिव आकर के विकारों का दान मांगते हैं, विषय भोग का दान मांगते हैं। वो विषय भोग देने में जो आगे बढ़ गई उसका नाम जगदम्बा कहो या अन्नपूर्णा कहो, इसलिए ये चित्र बन गया चरित्र का कि वो अन्नपूर्णा देवी ने भगवान को आकर के अन्न की भिक्षा दी, जो कोई तुम्हें नहीं देता है, हम पहले नंबर पर देते
बाबा वही चित्र किचन में लगाती है माता है।
तो अच्छी बात है ना, एक को देख करके 16,000 सरेंडर हो गई।
बोले ये चित्र लगाने से बोले किचन में कुछ कमी नहीं रही थी, बोले
स्थूल बात हो गई, ये सूक्ष्म बात है। जो तन मन धन का दान करता है उसके जन्म जन्मांतर सुहाले होंगे या कमी रहेगी? सुहाले बन जाते हैं।
बाबा रामायण में लक्ष्मण जो है शेषनाग का अवतार बताते हैं कृष्ण शेर में बलराम को, तो उसका ज्ञान कुछ के लिए बताए तो
कृष्ण को
बलराम और कृष्ण दोनों की जोड़ी का है, राम लक्ष्मण की जोड़ी का है, तो ज्ञान में उनसे कुछ ये भी होता है कि वो शेषनाग क्या होता है, ये इच्छा अविनाग सापों का कुछ है क्या कुछ ज्ञान में?
नाग तो नाग होता है, नाग भिकारी को कहा जाता है या निर्विकारी को कहा जाता है? तो देवताओं में जो ऐसा देवता नाग है जिसके फन के ऊपर कौन है खड़ी हुई पृथ्वी, सारी पृथ्वी का भार उस शेष नाग के ऊपर पड़ता है, इसको लक्ष्मण के रूप में दिखाया है। चाहे रामायण की कथा हो और चाहे महाभारत की कथा हो, चाहे देवासुर संग्राम की कथा हो, ये कथाएं कहां की यादगार है? संगम युग की तो यादगार है। एक ही बात को अनेकों रूप में दिखाया गया है।
और बाबा गौरी धर्म का फाउंडेशन कैसा लगता है? गौरी धर्म
बौद्ध
मुस्लिम जैसे बौद्ध
मुस्लिम में गौरी
गौरी धर्म है ना, उनका संगमित फाउंडेशन कैसा लिखता है?
कोई भी प्रकार के धर्म हो उनके छेड़े में छेड़े छेड़े में छेड़े निकलते चले जाते हैं। उनमें एक बोरी मुसलमान भी है, जैसे पठान मुसलमान होते हैं
जाते रहते हैं। उनका मस्जिद भी आलिम सा होता है
जी, मंदिर भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। ऐसे ही मस्जिदें भी अलग अलग प्रकार की होती है।
गणपति के जो युग जीवा थे रिद्धि और सिद्धि
किसी ने सिद्धि प्रदान की। सिद्धि कैसी मिलती है? विधि पूर्वक कर्म करेंगे तो सिद्धि मिलती है। रिद्धि धन संपत्ति को कहा जाता है। धन संपत्ति की जो कदर करता है उसको धन संपत्ति मिलती है। बाबा आकर के हमको कौन सी धन संपत्ति देते हैं? ये ज्ञान रतन ही स्थूल रतन बन जावेंगे तो रिद्धिवान बन जावेंगे ना। रिद्धि माने धन संपत्ति। इसलिए लक्ष्मी की पूजा करते हैं। क्या लक्ष्मी धन देती है? लक्ष्मी भी कहाँ से लाती है? नारायण से लाती। तो गणेश जी को जो भी रिद्धि और सिद्धि मिलती है वो किससे मिलती है? बाप से ही तो मिलती है। एक ही बात को अनेकों रूप में दिखाते हैं।
और बाबा ये बाबा बोलते हैं कोई भी अपना शरीर छोड़ दी तो उसको पहले चार पांच महीने का गर्भ बता देना चाहता है। तो ये कटे माना कोसी नदी का बांध टूट गया तो उसमें लाख दो लाख ढाई लाख खत्म हो गए एक ही टाइम में। तो उसका डेथ का कैसा होता है? माना इतने आत्माओं को शरीर तुरंत कैसा
नहीं हुआ?
उनका शरीर तैयार ही नहीं हुआ। आपने कैसे जान लिया उनका शरीर तैयार होता है?
उनका आकार ही मूर्ति बन जाती
है उनका शरीर, क्योंकि उनकी उम्र ही पूरी नहीं हुई। अकाले मौत में उन्होंने शरीर छोड़ दिया। जब उम्र ही पूरी नहीं हो रही है तो उनका शरीर कहाँ से गर्भ में तैयार हो जाएगा? संस्कार पकेंगे तभी तो गर्भ में पकना होगा। वो आत्मा तो बीच में ही शरीर छोड़ गई। देर की देर जिन्होंने भगवान को अनेक रूपों में मान लिया, उन्होंने भगवान को गणेश के रूप में मान लिया। जो भगवान का रूप और भगवानों के रूप में नहीं मानते, किस रूप में मानते हैं? विनायक के रूप में मानते हैं। तो जैसे भगवान के आठ रूप हो गए मुख्य अष्टदेव, ऐसे ही अष्ट विनायक बना दिए। बाकी कोई गणेश जैसा कोई बच्चा नहीं पैदा होता है। ये भक्ति मार्ग की सब कथा कहानियां हैं।
तैवी पटेल लोग अपने त्योहार बनाते हैं और उनके त्योहार बनाते
है।
तैवी पटेल
जमात है,
अपने त्योहार बनाते हैं और उनके मुसलमानों के त्योहार बनाते हैं,
हिंदू मुस्लिमों के त्योहार दोनों
के त्योहार बनाते हैं।
अरे अनेक प्रकार के धर्म हैं, अनेक प्रकार के उनके छोड़ छेड़े हैं, तो अनेक प्रकार की उनकी मान्यता है। कोई की क्या मान्यता, कोई की क्या मान्यता, इसमें नई बात क्या है? और जागने का अर्थ है ज्ञान की बातों में रहना। जाल शिकारी होता है वो पक्षियों को फंसाने के लिए क्या डालता है? जाल डालता है। हैं? ये माया भी क्या है? जाल डालने वाली है। हैं? तो भगवान बाप कहते हैं जालना, जाल ना डाल। हैं? मेरे ही बच्चे उसमें फंस जाएंगे। तू दूसरों के लिए जान डालती है।
मूर्त
शक्तिपीठ तो बहुत है। यहाँ जहाँ बताते हैं कि वो सती के अंग गिरे वहाँ वहाँ शक्तिपीठ बन गए। एक की बात थोड़ा ही है ना, साढ़े तीन की बात है। हाँ, शरीर के तीन अंग होते हैं, मुख्य सर धड़ और टांगे। फिर उसके अनेक अंग हो जाते हैं एक एक। बाहुपाश जन्म नहीं लेते, त्रेता में देह अभिमान जो है वो मुख से नीचे उतर जाता है, भुजाओं तक आ जाता है। संगम युग में बाबा ने कहा है जब तुम उल्टी सीढ़ी चढ़ते हो तो तुम्हारा डिस्चार्ज होना बंद हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि भ्रष्ट इंद्रियों से जो शक्ति छीण होती है वो छीणता बंद हो जाएगी। तुम इतनी आत्मिक स्थिति में स्थित हो जाएंगे कि वो इंद्रियां शीतल हो जाएंगी। उन शीतल इंद्रियों का देहभान का प्रभाव खत्म हो जाएगा, सिर्फ बाहुपाश में रहेगा, आंखों में रहेगा, मुख के प्यार की इच्छा होगी लेकिन भ्रष्ट इंद्रियों के प्यार की इच्छा समाप्त हो जाएगी। ऐसे ही सतयुग में जो राधा कृष्ण जैसे बच्चे पैदा होते हैं वो वाइब्रेशन की औलाद है, दृष्टि के प्यार से भी पैदा नहीं होते, क्योंकि संगम युग में जो लक्ष्मी नारायण नर से नारायण नारी से लक्ष्मी बनते हैं उनमें देहभान का नाम निशान नहीं होता। दृष्टि मात्र भी देहभान नहीं होता है, इसलिए जो पैदाइश होती है वो दृष्टि की प्यार की पैदाइश नहीं है, राधा कृष्ण वाइब्रेशन की पैदाइश है। फिर सतयुग के पहले जन्म से मुख के प्यार की पैदाइश होती है, दृष्टि का प्यार होता है, वो भी नीचे उतरते उतरते दो कला जब कम हो जाती है तो वो और नीचे उतर जाता है। जो मुख की श्रेष्ठ इंद्रियां है वो नीचे की स्टेज में चली जाती है, भुजाओं में बांधने की इच्छा होती है, जिसको कहते हैं भाकी पहनना। तो दो कलाएं कम हो गई, वो दो कला कम होते 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 आठ कलाएं त्रेता के अंत में कम हो जाती। माना जितना जितना देहभान नीचे की ओर खिसकता जाता है उतना उतना देहभान नीचे खिसकने के कारण उम्र भी कम होती जाती है और सुख भी कम होता जाता है। जो देवताएं लगातार सुख की स्टेज में रहते थे, वो सुख छीण हो जाता है। यहाँ तक कि द्वापर में आते आते भ्रष्ट इंद्रियों तक देवान उतर जाता है, सुख क्षण भंगुर रह जाता है और दुख बढ़ जाता है। इसलिए बाबा अभी बोलते हैं कि आत्मिक स्थिति में रहो, ये प्रैक्टिस जितनी जास्ती करेंगे उतने ऊंचे देवता बन जाएंगे, लगातार सुख के भागी बन जाएंगे। नहीं तो एक दो चार जन्म कम हो जाएंगे, जन्म कम हो जाएंगे तो सुख भी कम हो जाएंगे।
हेलो नका।